ଅଛନ୍ତି। ମନ କା ଟାଇମ ଟେବଲ ରଖନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନ ମେ ଯୋଗୀ ଭାବ କା ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରନେ କେ ଲିଏ ୟା କହେ ମନ ମନା ଭାବ ମହାମନ୍ତ୍ର କା अजापा जाप करने के लिए मन का टाइम टेबल रखना बहुत जरूरी है। बाबा ने हम सभी को इशारा भी दिया है कि आगे चलकर आप बच्चों को मनसा सेवा बहुत करनी पड़ेगी और मनसा सेवा करने के लिए आवश्यक है मनोबल की। तो अपने पास मनोबल बढ़ाने के लिए अर्थात मन को शक्तिशाली बनाने के लिए मन का टाइम टेबल रखना बहुत जरूरी है। वास्तव में मन बुद्धि ये आत्मा के दो बच्चे हैं। इन दो बच्चों ने माया के संग में आकर जो भी आत्मा के पास खजाने थे वो सारे खजाने गवा दिए, आत्मा को कंगाल बना दिया। अभी पुनः मन बुद्धि को परमात्मा के संग में रखते हुए आत्मा को सर्व खजानों से मालामाल करना जरूरी है। तो मन को सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के संग में रखने के लिए मन का टाइम टेबल रखना अति आवश्यक है। दुनिया में जो बड़े लोग होते हैं वो अपने समय का और दिनचर्या का टाइम टेबल रखते हैं जिससे उनकी दिनचर्या व्यवस्थित चलती रहती है और वो थोड़े समय में अधिक कार्य करते हैं और परिणाम स्वरूप वो क्रियाशील भी बढ़ते जाते हैं, क्रियाशीलता उनकी बढ़ती जाती है। तो हम भी बड़े बाप के बड़े बच्चे हैं, हम बच्चों को भी हमारे मन का टाइम टेबल रख के स्वयं को शक्तिशाली बनाना, सर्व खजानों से भरपूर करना बहुत जरूरी है। जितना हम मन को व्यस्त रखेंगे उतना मन की कार्यक्षमता, कार्यकुशलता और कार्यदक्षता बढ़ती जाएगी। तो मन का टाइम टेबल रखने के लिए मददगार बनने वाली पांच बातें हैं। सबसे पहली बात है सदैव समझे मैं मन का मालिक हूं, मैं आत्मा राजा मन का मालिक हूं। जब आत्मा अपनी ऊंची शान में रहती है तो स्वतः ही मन रूपी कर्मचारी उसकी हर बात मानता है और आत्मा का पूरा कंट्रोल और अनुशासन मन पर स्वतः ही रहता है, जिससे हम स्वयं को स्वराज अधिकारी भी अनुभव करते जाते हैं। दूसरी बात है, मन एक बच्चे के समान है। जैसे लौकिक मां छोटे बच्चे को ट्रेनिंग देती है कि बेटा ये आग है, इसको हाथ लगाने से हाथ जल जाएगा, ये खड्डा है, इसमें गिरने से चोट लग सकती है, तो ये सब बातें बताते हुए बच्चा धीरे धीरे समझदार बनता जाता है। तो ऐसे ही हम मन को ट्रेनिंग देते रहे। सबसे पहली बात, मन को समझाएं कि हे मन, विकारों के संग में रहने से मेला बन जाओगे, इसलिए विकारों से दूर रहो और साथ साथ याद की यात्रा की सीढ़ी जीन की तरह चढ़ते रहो और जब कार्य होता है तो उतरते रहो। तो ऐसा मन को ट्रेनिंग देने से मन हमारा अलर्ट रहता है और उसकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती जाती है। तीसरी बात है, मन घोड़े के समान है। जब घोड़े की लगाम हमारे हाथ में होती है तो निस्संदेह घोड़ा हमें अपने मन इच्छित मंजिल पर पहुंचा देता है। ऐसे ही मन रूपी घोड़े की बुद्धि रूपी लगाम आत्मा के अटेंशन रूपी मुट्ठी में जब होती है तो मन रूपी घोड़ा हमें अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाता जाता है, क्योंकि मन को बुद्धि कंट्रोल करती है। बुद्धि का कनेक्शन जब बाबा से जुड़ जाता है तो स्वतः ही आत्मा में शक्तियां आने लगती हैं और मन शक्तिशाली बनता जाता है। इसलिए इस राजयोग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। चौथी बात है, मन मेरा मित्र है। हम देखते हैं मित्र से बड़े प्यार से बातें करते हैं, तो हम अपने मित्र मन को मित्र बनाएं, उसके साथ बातें करें, उसका हालचाल लेते रहें, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई कठिनाई तो नहीं, तो हालचाल लेते हुए मन को हमेशा खुश रखें, मन को हमेशा शांत रखें और मन को हमेशा हल्का रखें। तो ऐसा शांत खुशनुमा और हल्का मन टाइम टेबल के अनुसार आगे बढ़ता जाता है। पांचवी बात है, मन मेरी रचना है। मन मेरी रचना है, मैं मन का रचता हूं। रचना रचता की हर बात मानता है, इसलिए मुझे रचना का नहीं सुनना है, लेकिन रचना मेरे ऑर्डर के अनुसार चले। मैं जो कमांडर हूं आत्मा, जो ऑर्डर मन को बुद्धि को देते रहूं, उसी ऑर्डर के अनुसार ये दोनों शक्तियां चलती रहें। इसी पोजीशन में हम रहें और मन को रचना समझकर उस पर पूरा अधिकार अनुभव करते रहें। अभी अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक कैसे मन का टाइम टेबल बनाएं, इसका सैंपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अमृत वेले जैसे ही हम उठते हैं, ऐसा अनुभव करें कि शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मेरे समक्ष विराजमान हैं। बाबा को गुड मॉर्निंग करें। गुड मॉर्निंग करने के बाद पहला संकल्प हमारे मन में स्वमान का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम हमें करना है ईश्वरीय नशे का पावरफुल डोज आत्मा को देना है, क्योंकि अमृत वेले नींद का नशा और ईश्वरीय नशा इन दोनों का संघर्ष होता है। और जिस नशे की जीत होती है वही नशा आत्मा पर छाया रहता है। अगर ईश्वरीय नशा पावरफुल हमें अनुभव होता है तो नींद का नशा खत्म होता है और बहुत मस्ती से शक्तियों का अमृत वेले हम प्राशन करने में सफल होते हैं। तो 4 बजे हम बैठते हैं योगाभ्यास में, तो 4 से 5 ऐसा मन को हमें टाइम टेबल देना है कि बाबा शक्तियों का सागर है, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान बाप से शक्तियों का शावर मुझ आत्मा पर आ रहा है, मैं आत्मा अनेक शक्तियां अथाह शक्तियां ग्रहण कर रही हूं और स्वयं को शक्तियों से संपन्न बना रही हूं। ऐसा बहुत अच्छी तरह से 1 घंटा हमें अनुभव करना है शक्तिशाली योगाभ्यास का। 5 से 6 हमें अनुभव करना है बाबा शांति के सागर हैं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, शांति के सागर बाप से मुझ आत्मा पर शांति की किरणें पड़ रही हैं, मैं परम शांति की अनुभूति कर रही हूं और मेरे द्वारा सारे विश्व की आत्माओं पर शांति की किरणें पड़ रही हैं और अनेक आत्माओं को शांति की अनुभूति हो रही है। ऐसा बहुत अच्छी तरह से हम अभ्यास करें। 6 से 7 ये अभ्यास करें, बाबा पवित्रता का सागर है, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर के अंग संग बैठे और पवित्रता की शक्ति आत्मा में भरते रहें। तो जैसा संग होगा वैसा रंग लगेगा, आत्मा में पवित्रता की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से आत्मा को पवित्रता की शक्ति से भरपूर करते रहना है। 7 से 8 मन को ये काम दें कि हे मन, अभी तुम्हें मुरली सुनते समय मुरलीधर की याद करना है। मुरली तो हम सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने का आनंद, मुरली सुनने की जो मस्ती है, मुरली सुनते समय अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें तब होती है जब मुरलीधर बाप की याद में हम मुरली सुनते हैं, तो हमारा मनवा मोर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने लगता है, नाचने लगता है और आत्मा परम आनंद से भरपूर होती है, ज्ञान रत्नों से भरपूर और परम आनंद से भरपूर। ऐसी अनुभूति हमें मुरली सुनते समय होती है। 8 से 9 मन को काम देना है कि हे मन, अभी तुम्हें सोमान के सीट पर सेट होना है कि बाबा चाहते हैं हर बच्चे को राजा बच्चे के रूप में देखना, और राजा हमेशा सिंहासन पर बैठा रहता है, तो आत्मा रूपी राजा सोमान के सिंहासन पर बैठे तो ऑटोमेटिक ईश्वरीय नशे की खुमारी हमें अनुभव होने लगती है। बाबा ने भी अभी अभी मुरली में कहा है सोमान का अनुभव आपको करना है, उसका स्वरूप हमें बनना है। तो जो बहुत रॉयल आत्माएं होती हैं, वो हमेशा अपने ऊंचे सोमान में रहती हैं, तो किसी न किसी सोमान के पॉइंट्स को बुद्धि में लाकर उसका बहुत अच्छी तरह से हमें स्वरूप बनना है और उसको अपने जीवन का अभिन्न अंग अनुभव करना है। जो बड़े लोग होते हैं वो टॉय पहनते हैं, वो अपनी शान समझते हैं टॉय पहनने में। तो हम जो रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, तो आत्मा का टॉय है सोमान का टाइटल धारी बनना, हमेशा सोमान का टाइटल रूपी टॉय हमें पहनकर रखना है, यही आत्मा की रॉयल्टी है। बाद में 9 से 10 बहुत अच्छी तरह से एकांत में बैठकर बाबा की दिल से महिमा करते रहना। जिसने हमें इतना ऊंचा जीवन दिया है, जो हमें इसी श्रेष्ठ निस्वार्थ पालना दे रहे हैं, इतने सुखों से हमें वो भरपूर कर रहा है, तो ऐसे पालनहार बाप को दिल से महिमा करते रहें, महिमा के फूलों की माला बनाकर बाबा को पहनाएं। साथ साथ जो भी हमें प्राप्तियां हो चुकी हैं बाबा से, उन प्राप्तियों की लिस्ट को याद करें, तो जिससे ऑटोमेटिक बाबा से हमारा प्यार बढ़ता जाएगा, और जितना प्यार बाबा से बढ़ता जाएगा उतना योगाभ्यास हमें सरल अनुभव होता जाएगा। 10 से 11 हमें अनुभव करना है। पवित्रता के सागर बाप ने मुझ आत्मा को इस संसार में पवित्रता के अवतार के रूप में भेजा है। मैं पवित्रता का अवतार हूं, जहां मैं जाता हूं पवित्रता की सुगंध, पवित्रता की वाइब्रेशन ही फैलाता रहता हूं। यह कार्य, यह सेवा मुझे पवित्रता के सागर बाप ने दी है। तो सारे समय हमें जो पवित्रता की हाईएस्ट अथॉरिटी है उसके नशे में रहना है और पवित्रता के वाइब्रेशन इर्द गिर्द फैलाने की ही सेवा करती रहनी है। पवित्र जो शब्द है इसमें इत्र शब्द अंतर्निहित है। पवित्र अर्थात जितनी जितनी हमारी पवित्रता की स्थिति बढ़ती जाती है उतनी उतनी आध्यात्मिकता की, चरित्रता की, पवित्रता की सुगंध, पवित्रता की इत्र इस संसार में, इस वायुमंडल में स्वतः ही फैलती रहती है। 11 से 12 हम ऐसा मन को काम दें कि हे मन, अभी तुम्हें खुदा को दोस्त के रूप में अनुभव करना है। बहुत लंबे समय के बाद तुम्हें दोस्त खुदा मिला है। उस खुदा दोस्त के साथ में बैठें, दिल के समाचार की लेन देन करें, उस दोस्त के साथ अंग संग की अनुभूति करें, उसके साथ चलें, खेलें और वतन की सैर करें, उसके साथ बहुत सुंदर अनुभूति हम करते रहें, अंग संग की अनुभूति करते रहें। क्योंकि खुदा के साथ जो हमारी दोस्ती है उस दोस्ती को गहरा बनाना है, बहुत समीपता उसकी बढ़ानी है, तो उसके लिए आवश्यकता है पवित्रता की शक्ति को बढ़ाने की। हमारी खुदा के साथ दोस्ती हुई है पवित्रता के प्रॉमिस के आधार से, उसको हमें अच्छी तरह से निभाना है, उसको बढ़ाते जाना है, तो हमारी दोस्ती गहरी होती जाएगी। क्योंकि जब इमरजेंसी का समय होता है उस समय हमें कोई भी मदद नहीं करता है, जो हमारा जिगरी दोस्त होता है वही हमें दौड़कर मदद करने के लिए आता है। तो खुदा के साथ हमारी इतनी गहरी दोस्ती हो, जो अंतिम समय इमरजेंसी के समय खुदा दौड़ कर हमें मदद करें और हम अंतिम नजारों को बहुत अच्छी तरह से पार करते हुए घर की ओर प्रस्थान कर सकें, उसके लिए ये संबंध अनुभव करना बहुत जरूरी है। 12 से 1 मनन चिंतन करते रहना, होशियार विद्यार्थी की निशानी है। होशियार अर्थात सदा होश में रहना, सदा उमंग और उत्साह में रहना, हर इंसान चाहता है अपने जीवन में नवीनता, और नवीनता को पाने का एक ही तरीका है मनन चिंतन करना। जितना हम ज्ञान सागर का मनन चिंतन करते जाते हैं हमें बाबा से एक नई नई प्रेरणा मिलती है, नई नई टचिंग्स मिलती है, नए नए ज्ञान रत्न मिलते हैं, जिससे हमारा उमंग उत्साह बरकरार रहता है। और ये अच्छे से अच्छे पुरुषार्थ की निशानी है, सदा उमंग उत्साह से भरपूर स्वयं को रखना। दूसरी बात है, ज्ञान का बल भी गाया गया है। मनन चिंतन के द्वारा जितना ज्ञान का बल आत्मा के पास बढ़ता है उतनी आत्मा निर्भय बनती है, उतना आत्मा का आत्मविश्वास और साहस बढ़ता रहता है। आत्मविश्वास और साहस ये सबसे बड़े हथियार हैं, आध्यात्मिक योद्धे के पास होना जरूरी है। हमेशा विजयी की स्थिति अनुभव करने के लिए ये दो दिव्य शस्त्र हमारे पास होना जरूरी है, लेकिन ये दो शस्त्र हमें मनन चिंतन से ही प्राप्त होते हैं। तो इन दो शस्त्रों को भी स्वयं के पास अनुभव करें और ज्ञान रत्नों से भी स्वयं को मालामाल अनुभव करें और ज्ञान रत्नों का व्यापार भी हम बढ़ाते जाएं, अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाएं। इसलिए मनन चिंतन करना बहुत जरूरी है। एक से दो हम बहुत रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। जो दुनिया में बड़े लोग होते हैं वो बार बार अपना ड्रेस चेंज करते हैं और दिखाते हैं मैं बहुत बड़ा हूं। तो हम सुप्रीम बाप के सुपरस्टार बच्चे हैं, सुप्रीम स्टार के सुपरस्टार बच्चे हैं। बाबा ने हमें बहुत सुंदर तीन ड्रेसेस दिए हैं, फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस, ब्राह्मण स्वरूप का ड्रेस और देवता स्वरूप का ड्रेस। ये तीनों ड्रेस केवल हमें रखने के लिए नहीं दिए हैं, लेकिन उन्हों का प्रयोग हमें करना है, उसका सुख अनुभव करना है। और जितना ये ड्रेस हम पहनते जाएंगे उतना हमारे वो दैवी संस्कार इमर्ज होते जाएंगे। तो एक से दो हमें फरिश्ता स्वरूप के ड्रेस पहनना है, मन को बताना है कि हे मन, मुझ आत्मा ने ये चमकीली ड्रेस, दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस पहन ली है, अभी इसी मस्ती में सदा रहो कि मैं एक अलौकिक फरिश्ता हूं। बाबा ने पिछले सीजन में स्पष्ट कहा है, चाहे कुछ भी हो, इस वर्ष आपको फरिश्ता स्वरूप के संस्कार इमर्ज करना ही है। तो फरिश्ता स्थिति के संस्कार इमर्ज करने के लिए ये फरिश्ता स्वरूप का ड्रेस आत्मा को पहनाकर रखना बहुत जरूरी है। फरिश्तों में तीन बातों की संपन्नता होती है, फरिश्ता स्वरूप नशे से संपन्न, गुणों से संपन्न और शक्तियों से संपन्न होता है। दिव्य गुणों से उसका चेहरा सजा हुआ होता है, बहुत सुंदर दिव्य भव्य पवित्रता का ताज पहना हुआ होता है और निरंतर परमात्मा के साथ बुद्धि की तार जुटी हुई रहती है। तो इसी तरह से हमें अपने फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज करना है और धीरे धीरे वो रॉयल्टी और वो रियल्टी हमारे व्यक्तित्व में हमें अनुभव करते रहना है। दो से तीन, मैं कर्म योगी फरिश्ता हूं। कर्म करते समय स्वयं को फरिश्ता अनुभव करें। कर्म योगी फरिश्ता बनना अर्थात डबल फोर्स से काम करना। मैं आत्मा तो इस कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूं, लेकिन बाबा के साथ कनेक्शन होने से बाबा की शक्तियों का फोर्स भी मेरे कर्म में मुझे अनुभव हो रहा है। जो मैं कार्य कर रहा हूं ये एक के बजाय दो लोग कर रहे हैं, दो आत्माएं कर रही हैं, तो इसलिए डबल फोर्स से काम चल रहा है। क्योंकि कर्म योगी फरिश्ता हमेशा स्वयं को करणहार समझता है और बाबा को करावनहार समझता है, इसलिए हमेशा वो सदा हल्का रहता है। तो चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते हुए हमें फरिश्ता स्वरूप अनुभव करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा मधुबन में, बाबा को जहां पर भी जो भी बच्चा देखता था एक अलौकिक फरिश्ता ही बाबा नजर आते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के देह रूपी मकान में आत्मा का दीपक हमेशा जलता हुआ प्रखर रहता था, इसलिए बाबा के हरेक कर्मेंद्रिय से दिव्य प्रकाश की रश्मियां प्रस्फुटित होती रहती थी। बाबा का फरिश्ता स्वरूप हर किसी को नजर आता था। बाद में चार से पांच हमें अनुभव करना है। बाबा ने हमें सूक्ष्म वतन में आमंत्रित किया है। किस लिए किया है? वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लगी हुई है, उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होने के लिए आपको बिठाया है, आपको बुलाया है, सेवा के प्लान करने के लिए, नए नए सेवा के प्लान करने के लिए। बाबा ने इशारा दिया है शिवरात्रि इतनी धूमधाम से मनाओ, इतनी धूमधाम से सेवा करो, सभी को बाबा का संदेश दो। तो वो संदेश देने के लिए, सेवा का प्लान करने के लिए मुझ विशेष आत्मा को बाबा ने वतन में आमंत्रित किया है। बाबा के समक्ष में बैठा हूं उस राउंड टेबल पर, बाबा के साथ चर्चा कर रहा हूं और बाबा से सकाश भी मुझे मिल रहा है, बाबा से नई नई प्रेरणाएं मुझे मिल रही हैं। ऐसा प्रैक्टिकल अनुभव करें, क्योंकि हम सभी स्पिरिचुअल इंजीनियर्स हैं, नई दुनिया बनाने के लिए नए नए प्लान, नई नई सेवा करने के लिए बाबा ने हमें निमित्त बनाए हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह से ये अभ्यास भी हम करते रहें। फिर बाद में है पांच से छह, पांच से छह नमाज शाम का समय होता है। बहुत अच्छी तरह से वातावरण हमें मदद करने लगता है, इसलिए इस समय मन को काम देना है कि हे मन, अभी तुम्हें अशरीरीपन की ड्रिल का अभ्यास करने में व्यस्त होना है। एकांत में बैठकर भ्रुकुटी में एक चमकता हुआ सितारा दिव्य देखना है, विजुलाइज करना है, और आत्मा के जो मूल सात गुण हैं, सुख शांति प्रेम पवित्रता ज्ञान आनंद शक्ति, ये सात गुण वाला सप्त ऋषि इस देह रूपी गुफा में बैठा है और एक एक गुण का बहुत अच्छी तरह से अनुभव कर रहा है। ड्रिल मास्टर मेरे शिव बाबा हैं, निराकारी बाप ड्रिल मास्टर के रूप में मेरे समक्ष विराजमान हैं। चाहे इस साकारी दुनिया में या निराकारी दुनिया में, मुझे निराकारी स्थिति की ड्रिल करा रहे हैं, सकाश भी दे रहे हैं, और उस स्थिति में मुझे स्थित होने के लिए सूक्ष्म सहयोग भी दे रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से पूरी एकाग्रता के साथ अशरीर स्थिति की ड्रिल में मस्त हूं। क्योंकि जितनी जितनी ये हमारी ड्रिल पक्की होती जाएगी, इसमें हम पारंगत होते जाएंगे, इसका अनुभव बढ़ाते जाएंगे, इसमें परफेक्शन आता जाएगा, जितना कमांड हमारा इस पर बढ़ता जाएगा, उतनी योग की स्थिति हमारी अचल अडोल बनती जाएगी। इसलिए कल्याणकारी बाबा ने जो हमें इशारा दिया है, अशरीरीपन की स्थिति या ड्रिल पक्का करने का, उसमें हमें मास्टर बनना है, इसलिए प्रतिदिन इसका अभ्यास बढ़ाते चलें। 6 से 7 बीज रूप स्थिति का अभ्यास करना है। रूहानी रूहान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन दोनों स्थितियों के द्वारा विकर्म हमारे भस्म नहीं होते हैं। लेकिन लाभ क्या होता है? इन दोनों स्थितियों के द्वारा नए विकर्म हमारे नहीं बनते हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि जो शक्तिशाली बीज रूप स्थिति की अनुभूति करना है, उसके लिए बैकग्राउंड बनता है। तो इस शरीर रूपी वृक्ष का मैं आत्मा बीज हूं, और मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का बाबा बीज हैं, और परम धाम में हम बैठे और बहुत अच्छी तरह से अनुभव करें कि शक्तियों का जो अथाह सागर है, आध्यात्मिक शक्तियों का जो प्रचंड स्रोत है, उस अथाह सागर से अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में भर रही हैं, मैं आत्मा शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। प्रखर शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं, और प्रखर योग की अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो रहे हैं। ऐसी सुंदर अनुभूति हमें बीज रूप स्थिति की में करना है। बाबा ने एक बार कहा था, शक्तिशाली योग अर्थात एक तरफ शक्तियों का एहसास करना, अनुभव करना, और दूसरी तरफ हल्केपन की अनुभूति और खुशी की अनुभूति करना, यह है शक्तिशाली स्थिति की निशानी। जो हमें बीज रूप स्थिति में करना है, क्योंकि ये शाम का समय इतना मददगार होता है, हमें एकांत में बैठकर एकाग्रता के लिए बहुत मदद करता है। 7 से 8 कहते हैं, देवताएं शाम को भ्रमण करते हैं, तो बाबा ने कहा है कि आपको फरिश्ता स्वरूप के द्वारा अनेक आत्माओं की मनसा सेवा करनी होगी। जैसे दादी जी के लिए हमने सुना, जिस समय दादी जी ने स्थूल शरीर का त्याग दिया, उस समय बाबा से जो मैसेज मिलते थे, एक दिन बाबा ने कहा, दादी जी अभी भी विश्व के ग्लोब को अपने सामने इमर्ज करती हैं और अनेक आत्माओं रूपी सितारों को सकाश देती है, बाबा से सकाश लेती हैं और अनेक आत्माओं को देती हैं। तो हमें भी यहां बैठे हैं, लेकिन हमारा फरिश्ता स्वरूप जो है, इस स्थूल शरीर से बाहर आके विश्व की ग्लोब पर उड़ रहा है, हनुमान की तरह उड़ रहा है, भ्रमण कर रहा है और अनेक आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दे रहा है। अभी जो प्रकृति की हलचल चल रही है, अकाले मृत्यु बढ़ रहे हैं, तो ये जो अशांत आत्माएं भटकती हैं उन्हों को शांति और शक्ति का दान देना हम बाबा के बच्चों का फर्ज होता है। इसलिए हम ऐसे फरिश्ता स्थिति के द्वारा विश्व के ग्लोब पर भ्रमण करते हुए आत्माओं को शांति शक्ति का दान देते रहें और अनेक आत्माओं की दुआएं प्राप्त करते रहें, क्योंकि संगम युग में कमाई है दुआओं की। जितनी जितनी दुआएं हम जमा करते हैं उतने उतने हम भविष्य में उज्जवल भविष्य प्राप्त करने के लिए अधिकारी बनते जाते हैं। तो 8 से 9 हमें देवता स्वरूप का ड्रेस पहनना है। जैसे नारायण का या लक्ष्मी का ड्रेस है, ऐसा बहुत सुंदर ड्रेस आपकी आत्मा ने पहना हुआ है। एकदम सत्वप्रधान प्रकृति से बना हुआ सत्वप्रधान वस्त्र शरीर का आपको पहना हुआ है और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया हुआ है। रतन जड़ी ताज और पवित्रता का ताज है और बड़े मस्ती से आप अपने महल में घूम रहे हैं, महल में टल रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से आनंद ले रहे हैं, प्रजा को मिल रहे हैं और अपना 56 प्रकार के भोग खा रहे हैं और बगीचे में प्रकृति से संपन्न बगीचे में टहल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और पुष्पक विमान से भी आप भ्रमण कर रहे हैं। ऐसा देवता स्वरूप से अनुभव करते हुए उसका आनंद हमें लेना है। बाद में 9 से 10 बाबा को सारे दिन का चार दें और एकदम स्वयं को हल्का करें और दूसरे दिन अमृत वेले का योग सफलतापूर्वक बनने के लिए ईश्वरीय नशे का अनुभव करें और बाबा की गोदी में विश्राम करें। तो अभी हम थोड़े समय के लिए बहुत सुंदर योग का अनुभव करना चाहेंगे। बाबा ने कहा कि अभी अनुभव की अथॉरिटी बनना है। तो योग का सुंदर अनुभव कौन करना चाहेंगे, हाथ उठाओ। थोड़े समय के लिए ही ऐसा अनुभव करेंगे जो आपको यादगार रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत आनंद आएगा। लेकिन अभी सभा में कोई भी उठेंगे नहीं, थोड़े समय के लिए शांति से बैठेंगे और बहुत मस्ती वाला शक्तिशाली अनुभूति वाला हम योगाभ्यास करेंगे। तो चले हम सभी अपने वतन की ओर। ओम शांति। इस देह रूपी पवित्र मंदिर में मैं आत्मा रूपी चैतन्य दीपक विराजमान हूं। मुझ आत्मा रूपी चैतन्य दीपक से दिव्यता का प्रकाश
दिव्यता की रोशनी चारों ओर फैल रही है। मैं अति सूक्ष्म चमकता हुआ दिव्य ज्योति बिंदु सितारा हूं। शांत स्वरूप ज्योति बिंदु हूं। शांति की किरणें शांति के प्रकंपन शांतिवन में फैल रहे हैं। परम शांति की अनुभूति हो रही है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर दिव्य ताज मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। सचमुच मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूं। जिस स्वयं के सत्य स्वरूप को बिंदु स्वरूप को बुद्धि रूपी दिव्य नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। मैं भगवान की नजरों में आई हुई भाग्यवान आत्मा हूं। जैसे आसमान में जड़ सितारे चमक रहे हैं, वैसे मैं भी इस धरती पर विराजमान चैतन्य सितारा चमक रहा हूं। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर परम धाम की ओर जा रही हूं। इस साकारी दुनिया से पार। चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार। जा रही हूं जा रही हूं। ओह कितनी सुंदर है ये फरिश्तों की नगरी। चारों ओर सफेद ही सफेद, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की ड्रेस फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओहो फरिश्तों के बादशाह, प्यारे ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मीठे शिव बाबा भी उनके भ्रुकुटी में दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह के सागर में समा गई हूं, डूब चुकी हूं। बाबा की बाहों में समा गई हूं। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूं। जा रही हूं। ओहो कितनी न्यारी और प्यारी है ये निराकारी दुनिया। प्यारा परम धाम, चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल, दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। शांति का सन्नाटा छाया हुआ है। ओहो मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम प्यारे शिव बाबा मेरे समक्ष विराजमान है। बस दिल कहता है बाबा की सुंदरता को देखती ही रहूं। निहारती ही रहूं। बाबा बाबा मैं आत्मा दुख के सागर में गोते खा रही थी, तड़प रही थी, छटपटा रही थी, पर हे रहम के सागर बाबा, आपने मुझे दुख के सागर से निकाल कर अपनी शीतल गोद में अतीन्द्र सुख के झूले में बिठा दिया। बाबा मेरी जन्म जन्मांतर की थकान मिट गई। बाबा जो उपकार आपने मुझ पर किया बाबा, मैं भूल नहीं सकती, नहीं भूल सकती बाबा। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं, शक्तियों के सागर बाप से अथाह शक्तियों की प्रखर किरणें निरंतर मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, अथाह शक्तियां मैं आत्मा ग्रहण कर रही हूं, और योग की प्रखर अग्नि में मेरे जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं को एकदम लाइट अनुभव कर रही हूं। शक्तियों के सागर से अथाह शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, मेरी आत्मा रूपी बैटरी शक्तियों से भरपूर हो रही है। बाबा मुझे सब कुछ मिल गया बाबा, एक मेरी छोटी सी और आस है बाबा कि मेरे दिल रूपी मंदिर में केवल आपके ही प्यार का दिया अखंड जलता रहे, बस जलता ही रहे, और मैं आत्मा सच्ची योगी बनकर संगम की हर घड़ी में आपके ही महिमा के गीत गाती रहूं, गुनगुनाती रहूं, आपके ही संग में आपके ही रंग में रंगती रहूं। शक्तियों से संपन्न आत्मा परम धाम से साकारी दुनिया की ओर वापस आ रही हूं और इस साकारी शरीर में भ्रुकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुकी हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे चारों ओर फैल रही है। इस वायुमंडल को भी शक्तिशाली बना रहे हैं। इस संसार में मेरा अस्तित्व केवल एक ज्योति बिंदु रूप में ही है। ओम शांति शांति शांति।